शांति, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। उसके पूर्व हमारे मुलुन से हमारे प्रयास भाई आए हुए, जो बहुत सुंदर एक गणेश वंदना नृत्य हमारे सामने पेश करेंगे। उस नृत्य को हम देखते उसका आनंद लेते हैं जब तक सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होता है। मुलुन से प्रयास भाई।
ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय सुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। अष्टौ सिद्धि दाती संकट को वैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी।
अष्टौ सिद्धि दाती संकट को वैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी।
कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। आवे संतति संपति सब ही भरपूर पावे,
भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपति सब ही भरपूर पावे।
ऐसे तुम महाराज मुको अति भावे, गोसावी नंदन निशि दिन गुण गावे।
सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
बहुत बहुत धन्यवाद बीके प्रयास भाई का, जिन्होंने आपके सामने गणेश वंदना प्रस्तुत की डांस के द्वारा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनाने वाले परमात्मा पिता के महान भाग्यशाली बच्चे, उनका ही प्रतीक है विघ्न विनाशक श्री गणेश। जब हम इस नॉलेज को अपने लाइफ में अपनाते हैं तो किस तरह से अपने जीवन में आने वाले विभिन्न तरह के विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। तो इसकी प्रस्तुति आपने यहाँ दी, हमें बहुत बहुत धन्यवाद है बीके प्रयास भाई का। अब हम हमारे अब के अंतिम वे सेशन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच आज के हमारे इस लेक्चर सेशन का टॉपिक है मेक हैप्पीनेस अ हैबिट। इसके हमारे जो आज के स्पीकर है आदरणीय डॉक्टर अवतार सिंह, मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ। आप आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए भाई साहब से आपको परिचित करा रहे हैं। आपका बायोडाटा इंग्लिश में है, मैं एज इट इज आपको परिचित करा रही हूँ। डॉक्टर अवतार सिंह पीएचडी एआरएस फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। ही हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट in animal genetics and breeding on 16th August 2016. He is former officer in charge in personality development NDRI Karnal. He has recently obtained postgraduate diploma in psychological counseling and hypnotherapy from Annamalai University Madurai on 12th February 2017, and there are lot many contributions for him. He has authored 3 books, 1 instruction manual, 5 books, book chapters, and published 105 research review technical papers in journals of national and international repute. He has guided more than 20 PhD and PG scholars for their dissertation, and a lot many awards are there with him. He has been confirmed with Dr. D. Sundar Sen Best Scientist Award in 2005. By Padma Bhushan Professor Dr. R.B. Singh, President, NAAS, New Delhi, for significant contribution in animal genetics and breeding on 19th February 2010. Then Bharat Excellence Award also is there with him. He has been confirmed with Bharat Excellence Award for overall achievements in the field of animal genetics and breeding on 29th July 2006 by Lieutenant Governor New Delhi. Then he has been conferred with Haryana Gaurav Samman 2015 for contribution to animal breeding and genetics by OSD to Chief Minister Haryana on 11th February 2015. Vice President International Human Rights Association Haryana Chapter he has been, and then he is editor Indian Journal of Animal Research, he is editor also. Then he has been confirmed with an honorary appointment to the Research Board of Advisors by the American Biographical Institute, North Carolina, USA, since 2001, and he is a Raj Yogi also. He is in this spiritual knowledge, in this Raj Yoga practice, since last 40 years. So let we give him big hands. He is there with us. Now he is delivering his speech for us.
Om Shanti. Om Shanti. Satyam Shivam Sundaram. Sat Chit Ananda Swarup. Sat Shri Akal Murat. Parampita Paramatma Ki Priya Santan. Panipat Se Padhari Hamari प्यारी बहन सरला जी, जिनको मैं पिछले 40 वर्ष से जानता हूं, बहुत ही सरल, जैसा कि नाम है, एक डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, मंच संचालिका, राजयोगिनी तपस्विनी, चेतना बहन जी, सभा में उपस्थित वैज्ञानिक अभियंतागण तथा भाइयों तथा बहनों, दिस इज द लास्ट सेशन, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, कि कैसे हम हैप्पीनेस को अपनी आदत बना लें, स्वभाव बना लें, सहज हो जाए, हैप्पीनेस पेरिनियल हो जाए, शाश्वत हो जाए, हम शाश्वत आनंद बन जाएं, शाश्वत खुशी हो जाए। हम चार दिन से यही सुन रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज का एक उद्देश्य ये होता है कि आप सबको यहां पे लाके हम आपको स्पिरिचुअली चार्ज करते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड है वही जीवन का इंचार्ज बनता है, जो डिस्चार्ज है वो कभी इंचार्ज नहीं हो सकता। तो यहां हमें स्पिरिचुअली चार्ज करने के लिए बुलाया गया है। साइंस, ये कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना होता है, बट एम एंड ऑब्जेक्ट जो है पीछे क्या है, टू डिविनाइज आवर सेल्फ, टू स्पिरिचुअलाइज आवर सेल्फ, टू एनर्जाइज आवर सेल्फ। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, फॉर्मल वक्तव्य, मुझे दो पंक्तियां बहुत ही प्रिय हैं, वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है, और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो जाता है। कौन सा पत्थर है जो शंकर शंकर हो जाता है? जो हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो हम शंकर शंकर हो सकते हैं, संभावना है। और अगर हम मेंटली वीक हैं, या स्ट्रांगली मेंटल हैं, या स्ट्रांगली सेंटीमेंटल हैं, तो हम शंकर की बजाय कंकर कंकर हो जाते हैं। तो जो मेंटली स्ट्रांग है उनको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, और जो मेंटली वीक हैं, स्पिरिचुअली वीक हैं, उनकी स्थिति फिर डिप्रेशन और कई प्रकार के रोग, मानसिक उनमें व्यक्ति चला जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, मेकिंग हैप्पीनेस ए हैबिट, लाइट द कैंडल ऑफ हैप्पीनेस। इफ यू आर नॉट लाइटिंग एनी कैंडल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर आप ज्योत नहीं जगाते खुशी की, तो गम ना हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और हैप्पीनेस है क्या, इसकी चर्चा हम चार दिनों से सुन रहे हैं। कि हैप्पीनेस इज द इनर क्वालिटी एंड इज स्टेट ऑफ माइंड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये भीतर से आती है, एक वैसल है, एक बर्तन है जो ढका हुआ है, इच्छाओं से ढका हुआ है। जैसे ही कोई इच्छा पूरी होती है तो ढक्कन हटता है और भीतर से खुशी प्रकट होती है, लेकिन खुशी तब तक नहीं हो सकती जब तक इट शुड बी कपल्ड विद पीस आल्सो। अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया का कोई पदार्थ आपको शांत नहीं कर सकता, खुशी नहीं दे सकता। इसीलिए कहा हुआ है, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। तो क्या जो संसार के एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे, क्या वहां सब सुखी हैं? अगर बाह्य रिचनेस देखी जाए तो वहां रिचनेस तो बहुत है, लेकिन जब तक भीतर की शांति नहीं होगी तब तक खुशी हो नहीं सकती। आप देखिए हमारी दादी जानकी जी, जिनका स्वभाव हो गया है हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, पवित्रता, ये सब कहां से आई? उस परमेश्वर से। हैबिट है क्या? ये अनकॉन्शियस पैटर्न है अब बिहेवियर, जो हम रेपिटेशन से एक्वायर करते हैं। यहां पर भी हमें यही शिक्षा बार बार दी जा रही है कि हम इसको अपना स्वभाव संस्कार बनाएं, उसको रिपीट करें अपनी जिंदगी में। यू कैन इंप्रूव योर हैप्पीनेस, दिस इज अ गुड न्यूज, कि हम सब अपनी खुशी को इंप्रूव कर सकते हैं। जेनेटिकली, मैं जेनेटिक्स का पीएचडी मेरी जेनेटिक्स में है, तो जेनेटिक्स में हरेक की डीएनए डिफाइंड है। जब हम जन्म होता है तो सारी लाइफ लॉन्ग वही डीएनए कहते रहता है, ये यूनिकनेस है हमारे भीतर, लेकिन इट कैन बी चेंज विद द एनवायरमेंट। तो अगर हम उसको, आप देखो एक ही माँ बाप, उनके दो बच्चे, चार बच्चे, फैक्ट्री सेम है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव संस्कार, उनके खुशी के स्तर अलग अलग क्यों होते हैं? जेनेटिकली तो एक ही पेरेंट्स हैं दोनों के, आइडेंटिकल ट्विन्स भी जो होते हैं उनका भी खुशी का पैटर्न डिफरेंट क्यों होता है? यहां पे स्पिरिचुअलिटी आती है कि जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी यात्रा है, कोई कहां खड़ा है, कोई कहां खड़ा है, इस यात्रा में डिफरेंट लेवल्स हैं। सो व्हाटसोएवर इज आवर टेम्परामेंट, हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा ना सकते होते तो यहां आने का कोई फायदा ही ना होता। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वी कैन रीवायर आवर ब्रेन्स। पहले ये एक मान्यता थी कि एक एज तक ही आपका आईक्यू भी बढ़ता है, या आपका पैटर्न दिमाग का एक जैसा रहता है, रिजिडिटी थी उसमें। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यू कैन रीवायर योर ब्रेन थ्रू आउट योर लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू एंड हाउ वी थिंक। कैसे हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उससे हम अपने आप को, इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज भी की जा सकती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको कहें मुस्कुराओ, और आप इस मुस्कुराने को कॉन्शियस एफर्ट बनाते हैं, जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, कुछ समय बाद ये आपका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो एज पर न्यूरो साइंटिस्ट, बाय डेलिबरेटली थिंकिंग हैप्पी थॉट्स वी कैन बिल्ड न्यू कनेक्शंस इन आवर ब्रेन। नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस के। तो इस तरह से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है कि कई लोग जो है सेंसुअल प्लेजर्स को, जो इंद्रिय सुख हैं, जिसके लिए आजकल हम लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? और कोई डिस्कोथेक्स में जा रहे हैं, कोई कहां जा रहे हैं, इन्हीं चीजों में लगे हैं, जो इंद्रिय सुख हैं, जिनको हम कहते हैं ये क्षणिक, टेम्परेरी है, एफिमरल है। और भारत के अंदर एक दर्शन है चारवाक दर्शन, उसकी फिलॉसफी क्या थी? उसकी फिलॉसफी थी यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक दिन ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाना है, तो वो जो कर्जा लिया वो देने वापस कौन आएगा। इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये भी एक सिद्धांत है कि हम हैप्पीनेस पा सकते हैं, बट दोज आर प्लेजर्स नॉट दी हैप्पीनेस और ब्लिस। आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात होती है, कोई किस तरह से डिफाइन करते हैं, कोई किस तरह से, इंटरनेशनल लेवल पे कई उसके हैप्पीनेस इंडिकेटर्स हैं, हम उन सब में नहीं जाएंगे। वी हैव बीन लिसनिंग टू दिस फॉर द लास्ट 3-4 डेज। हैप्पीनेस की सिंपल परिभाषा है डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिजायर्स अनफुलफिल्ड। जितनी डिजायर ज्यादा फुलफिल होंगी और जो अनफुलफिल्ड डिजायर कम होंगी, उतना आपका हैप्पीनेस इंडेक्स होगा। या दूसरे शब्दों में किसी ने कहा, वेयर यू एस्पायर टू बी माइनस वेयर यू आर प्रेजेंटली, आप कहां आज खड़े हैं और आप चाहते क्या, आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, उसके बीच में जो गैप है उसको अगर हम डिफरेंट हेल्थ हैप्पीनेस पैरामीटर के लिए सम अप कर देते हैं, तो दैट विल गिव यू योर हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इस तरह से कई तरह की परिभाषाएं वो दी हुई हैं, हम उन सब की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा हमने रखनी है। फिर है डिविनिटी, हम सब के भीतर डिविनिटी है। विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। शिव बाबा भी कहते हैं आप दिव्य आत्मा हो। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। हम सब का लक्ष्य क्या है जीवन का, कि जो हम सब के भीतर छिपी हुई वो भगवत्ता, वो दिव्यता हम सब के भीतर है, उसका प्रगटीकरण हम सब के जीवन का लक्ष्य है। और जितनी वो दिव्यता हमारे भीतर प्रकट होती जाती है, उतनी हमारी हैप्पीनेस वो भी प्रकट होती जाती है। सो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, आइदर बाय साइकिक और फिजिकल कंट्रोल। डू दिस एंड बी फ्री, दिस इज होल ऑफ द रिलीजन। सारे धर्मों का सार क्या है, वो जो दिव्यता हमारे भीतर छिपी है, वो जो खुशी हमारे भीतर छिपी है, जो उस वैसल के भीतर है, उसको प्रकट करना हम सबका लक्ष्य है। एक महात्मा थे, उनके पास एक राजा आए, उसने घोड़े के ऊपर हीरे जवाहरात बहुत रखे हुए थे। उसने कहा, मैं कई महात्माओं के पास होके आया हूं, मुझे सच्ची खुशी चाहिए। मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप मुझे खुशी दे सकते हैं, सच्ची खुशी का रास्ता बता सकते हैं। तो उस महात्मा ने, जब वो बात कर रहे थे, उसी समय वो बैग पड़ा हुआ था हीरे जवाहरात का, वो महात्मा ने बैग उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बैग उठा के हीरे जवाहरात का दौड़ना शुरू किया, राजा सोचने लगा, लोगों ने तो कहा था ये बहुत बड़ा महात्मा है, और इसने तो, ये तो कोई चोर नजर आता है जिसने हीरे जवाहरात उठा के और भागना शुरू कर दिया। उस गांव की गलियों में कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते, राजा उसके पीछे पीछे और साधु आगे आगे। तो वो सोचने लगा ये क्या है, जब देखा महात्मा जी ने कि अब राजा थक गया है, तो उसका थैला ऐसे फेंक दिया, बैग ऐसे फेंक दिया। जब बैग फेंक दिया तो राजा ने एकदम उठा के उसको छाती से लगा लिया। तो उसने पूछा, खुशी मिली, आनंद मिला? तो राजा कहता है, जी बड़ा खुशी मिली, बहुत आनंद मिला। कहते, देखो ये तो तुम्हारी ही वस्तु थी, मैंने तुम्हें ही वापस कर दिया, कोई मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी भी हम सबको बताती हैं कि हमारी खुशी हमारे पास है, उसी को जागृत कर लेना है, उसी को प्रकट कर लेना है। देन क्वालिटी थॉट्स लीड टू हैप्पीनेस। जब तक हम हर जगह जीवन में क्वालिटी ढूंढते हैं, हमारे एनडीआरआई करनाल के अंदर, हम लोग एनडीआरआई में प्योर घी बनाते हैं, गाय का देसी घी, तो दूर दूर से दुनिया आती है। हमें रोज फोन आते थे कि हमें इतने किलो घी ले दो क्योंकि प्योर है, वी गो फॉर क्वालिटी। वो लिबर्टी के जूते मांगता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, किस लिए? क्वालिटी। लेकिन ये अपनी थॉट्स की क्वालिटी क्या हमने वो चेक की है कभी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है। ऐसा एक कैलकुलेशन है, एस्टिमेट है कि जो 70 साल जिसकी उम्र है, लगभग 70 से 100 करोड़ उसकी थॉट्स उसके जीवन में हुई है। उसमें से कितनी एलिवेटेड थॉट हैं, कितनी क्वालिटी थॉट हैं, कितनी पॉजिटिव थॉट हैं, और नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो तो नेगेटिव और डिप्रेसिव थॉट्स में ही चली जाती है। तो हमें ये देखना है कि वेदर वी आर हैविंग क्वालिटी थॉट्स। अगर क्वालिटी थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत सुंदर होगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, तो क्वालिटी टाइम तभी होगा। आजकल तो फैमिलीज में क्या होता है, दो लोग इकट्ठे बैठते हैं, पहली बात तो बात नहीं होती, क्योंकि वो अपना मोबाइल लेके बैठा होता है, वो अपना मोबाइल लेके बैठा होता है, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते रहते, रियल में आपस में एक्सचेंज नहीं होता। और जब एक्सचेंज होता भी है तो आपको पता है किस ढंग का होता है, वो आपस में बहुत जल्दी तू तू मैं मैं पे उतर आते हैं। तो क्वालिटी थॉट्स की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, तो उसी से हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी और पॉजिटिव अफर्मेशन जितनी है लाइफ में हमारी होंगी तो हमारे जीवन में क्वालिटी थॉट्स हैप्पीनेस आएगी। जैसे हम रोज सुन रहे हैं चर्चा, आज सुबह भी सुनी, सुरेश गुप्ता जी भी बात कर रहे थे, माधुरी बहन ने भी बात की पर्सनैलिटी के जो लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस 5, वहां 4 बता रहे थे, मैं एक और ऐड कर दिया इंटेलेक्चुअल। ये सारी पर्सनैलिटी के ऊपर अगर हमें वर्क करना है हैप्पीनेस के लिए तो 5 लेवल्स वी नीड टू इम्प्रूव। डिस्ट्रॉयर्स आर हैप्पीनेस कौन है इफ यू आर फिजिकली अनफिट, इनकी डिटेल्स थोड़ी सी देखेंगे मैं जल्दी जल्दी, आई एम रनिंग थ्रू दी स्लाइड्स। देन इमोशनली अगर आप इम्बेलेंस्ड हैं और इंटेलेक्चुअली इनडिसीजिव हैं, आप निर्णय की स्थिति पर नहीं पहुंच पाते, यू आर इन डायलेमास, या स्पिरिचुअली आप डेफिशिएंट हैं, या सोशली डिसहारमोनियस है, समाज में आपका जो है हारमोनियस कनेक्शन नहीं है, तो अगर आप फिजिकली अनफिट हैं और आपकी बॉडी डेबिलिटेटेड है, वीक है, कमजोर है, कान सुनते नहीं हैं, मुख से बोल नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, या फिर कोई बीमारियां आती हैं जब सीजनल चेंजेस होते हैं तो उस वक्त कई जर्म्स फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलते हैं, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो आप वल्नरेबल होंगे टू डिफरेंट डिजीजेस, तो उसके कारण भी आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो फिजिकली अनफिट है वो कभी खुश नहीं रह सकता, जो इमोशनली इम्बेलेंस्ड है। इमोशन का मतलब ही होता है एनर्जी इन मोशन, दैट एनर्जी विच ब्रिंग्स अस इनटू मोशन और एक्टिविटी। इमोशंस आर द मोटिवेटर्स और द ड्राइवर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन को इमोशंस ड्राइव करती हैं। कईयों का व्यक्तित्व कैसा होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट है, एक क्षण में तुष्ट है, ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। यहां भावनाओं की सुनामी भी आती है, भावनाओं के ज्वार भाटा भी आते हैं, जिससे फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डाइवोर्सेज हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और ये कई तरह की इमोशन है। द हाइएस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव इमोशन इज LOVE, लव। जब लव जागृत हो जाता है तो सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम लगने लगता है, अदरवाइज संसार में नफरत बहुत है। कई व्यक्तियों को एंग्जाइटी रिडन पर्सनैलिटी होते हैं, कोई एंगर बहुत आता है, उसकी बात भी हम लोगों ने की इन दिनों में, और एक फियर साइकोसिस भी कईयों की लाइफ में बहुत होता है, भयग्रस्त रहते हैं, हर वक्त डरे डरे से रहते हैं, वो भी जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। सो वी नीड टू बी इमोशनली स्टेबल। अब आता है, अगर हम इंटेलेक्चुअली इनडिसीजिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिडन हमारी पर्सनैलिटी है, द्वंद्व में हम जीते हैं निरंतर, तो भी हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं, और उसी में हमारी बहुत एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो यू विल फील एनर्जी डेफिशिएंट लीडिंग टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस। फिर स्पिरिचुअली डेफिशिएंट, आज संसार के अंदर बहुत फिलॉसफीज हैं, बहुत सिद्धांत हैं। आप बात करो, भारत के अंदर ही 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, ब्राह्मण और अनन्य ग्रंथ कितने हैं, और उधर से फिर दूसरे धर्मों की बात करो, उनके शास्त्र, तो एक क्वैगमायर है, एक दलदल है सिद्धांतों का, लेकिन वो सिद्धांतों में ही उलझ के कई बार रह जाते हैं और जीवन से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत प्यारी सी फिलॉसफी जो शिव बाबा के द्वारा उद्घाटित है वो हमें सिखाई जाती है, वो जिंदगी को चेंज कर देती है। अब बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं कि कहते हैं ना भी कैसे पता लगे ये बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिकली आप लाइफ देखिए ना। तो यहाँ पे कैसे जो है इतनी बहनें, इतने भाई, इतने गृहस्थी पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, ये एक चैलेंज की बात है। तो आज जो कहते हैं धर्मों ने शायद उतना फायदा नहीं किया जितना नुकसान किया है, क्योंकि इंटर रिलीजियस स्ट्राइफ, जो धर्म के आपस में युद्ध होते हैं आपस में धर्मों के, उससे कितनी जानें चली जाती हैं और ज्ञान होता नहीं। अगर धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन कितनी जल्दी हम समाज के अंदर युद्ध शुरू हो जाते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि इस लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन हो तो कभी जो है आपस में झगड़े नहीं हो सकते, और उनको कोई कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। झगड़ते कौन जिनको अनुभव नहीं। अगर आपको अनुभव हो जाए तो क्या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं? नेवर एवर, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। समाज के अंदर फिर हमें जो है डिसहार्मनी है तो भी रिलेशंस के अंदर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे ऑफिस हो, चाहे अपने सर्वेंट्स हैं, या विद सेल्फ, अपने साथ भी हार्मनी नहीं होती। इसके लिए सिंपल भाषा में कह सकते हैं मेरी अब मेरे साथ भी नहीं बनती, मेरी अपने साथ भी नहीं बनती है, क्योंकि मैं कई बार ऐसी चीजें बोल जाता हूं जिसके लिए मुझे क्षमा मांगनी पड़ती है। अगर मैं अपने ऊपर ही मेरा बिलीफ नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वाई शुड अदर्स हैव कॉन्फिडेंस इन मी। तो उसके कारण भी समाज के अंदर जहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हार्मोनियस नहीं है रिलेशनशिप्स, वहां पे भी होती डिसहार्मनी। सो व्हाट वी फाइनली नीड इज इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी लीडिंग टू अबाइडिंग हैप्पीनेस। कैसी व्यक्तित्व चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी चाहिए? इंटेग्रेटेड एट 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिकल लेवल पे गुड हेल्थ, गुड स्लीप, बैलेंस डाइट, सिक्योरिटी। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, कूल एंड काम अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वी नीड टू बी नॉलेजेबल, वी शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वट एवर आवर सब्जेक्ट्स आर और द स्पिरिचुअल नॉलेज। अपने बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान जो हमें यहां दिया जाता है, अगर हम ये हमारे पास ये ज्ञान नहीं तो भी कल्याण नहीं होगा। फिर है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में लव फॉर वन एंड ऑल, सबके लिए प्रेम हृदय में हमारे भरा हुआ हो। नो एनिमी, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम आजाद शत्रु, हम विश्वामित्र हैं, सारा संसार हमारा मित्र है। सो इट लीड्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और फाइनली सोशल हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी इन ब्लड रिलेशंस, फ्रेंड्स, ऑफिस, एंड हार्मनी विद नेचर आल्सो। आज नेचर के साथ हार्मनी, डिफॉरेस्टेशन होने से हार्मनी खत्म हो रही, कुदरत के साथ, एनिमल्स के साथ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फ्लोरा एंड फौना, उनके साथ भी सारा हमारा संबंध टूटने से धीरे धीरे आज देख रहे हैं कितने फ्लड्स आ रहे हैं। ये सब मनुष्य की ही देन है। फिर कुछ और टिप्स हम करके मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। एक है बी फ्रेंड योर माइंड, अपने मन को अपना दोस्त बना लो। अगर आप अपने मन को अपना दोस्त बना लोगे, इफ यू हैव फ्रेंड्स विद योर सेल्फ यू विल नेवर बी लोन। अगर आपकी अपने साथ ही दोस्ती है तो आप एकांत में भी अकेले नहीं है। आपकी खुदा के साथ दोस्ती है तो आप एकांत में भी अकेले नहीं। आपने मन को दोस्त बना लिया तो आप एकांत में भी अकेले नहीं है। तो ये जो मन है हमारा, ये नेगेटिव थॉट्स से क्राउडेड है। अब इसके अंदर जो हमें पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, परमात्मा की थॉट्स, जब हम ये डालेंगे तो बिल्कुल मौज बन जाएगी, खुशी हो जाएगी। एक गीत भी है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। एक और भी है, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन इसको अगर दोस्त बना लेंगे तो दिल भी मान जाएगा और बच्चा भी समझदार हो जाएगा, समझदार बच्चा बन जाएगा। फिर है लेट गो। किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखना है। छोटी सी बात सुनाऊंगा। दो भाइयों में किसी बात पे झगड़ा हुआ। दोनों ने कसम खाई हम एक दूसरे की दहलीज पार नहीं करेंगे। 15 साल बीत गए, दोनों एक दूसरे के घर नहीं गए। 15 साल के बाद जो बड़ा था उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई, तो उसके मन में आया दुनिया वाले क्या कहेंगे, छोटे भाई को मना लेते हैं। तो उसके पास गया, उसको कहता छोड़ो 15 साल पुरानी बातें, मेरी बेटी की शादी आपको आना है। लेकिन उसने कहा नो नो वे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन जो छोटे वाला भाई था उसने कोई गुरु किया हुआ था, किसी गुरु की संगत में जाता था, तो बड़े वाले भाई ने सोचा मेरी बात तो मान रहा है, गुरु की तो मानेगा। तो वो गुरु के पास गया, उसने गुरु को कहा जिसको कुछ समझाओ, मेरी बेटी की शादी है, ये आ नहीं रहा है। तो गुरु ने उसको बुलाया शिष्य को पास, कहता ऐसे है आप ये बताओ परसों मैंने क्या सत्संग सुनाया था। तो कहने लगा जी परसों का सत्संग तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो उसने कहा तुझे परसों का सत्संग याद नहीं और 15 साल पुरानी बात याद है? तो उसको गुरु की बात जो है दिल में लगी और उसने वो जो अपने मन के अंदर वैमनस्य की भावना या विरोध की भावना या दुश्मनी की भावना भाई के प्रति रखी थी वो त्याग दी। तो इस तरह से हमें जो है लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पकड़ के रखेंगे तो खुद को ही जकड़ के रखेंगे। तो इसको कहते हैं लेट गो। पक्षी भी कब उड़ सकता है? जब अपने पंजे छोड़ देता है। अगर पक्षी कहते हैं डाल पे बैठा हुआ, एक पक्षी बोल रहा था मुझे कोई छुड़ाए मुझे कोई छुड़ाए, तो वहां से महात्मा जी गुजरे, उन्होंने कहा भी तूने ही पंजों से पकड़ रखा, इसको छोड़ दे और उड़ जा। ऐसे ही हमने भी अपना बॉन्डेजेस है, हमारे बंधन है, उनको हमने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हम खुद ही छूटना नहीं चाहते हैं, खुद ही उसमें जकड़े पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। तो अगर हमें उड़ना है तो पुरानी बातों को भूलना होगा। हमारे यहां ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक शब्द है बड़ा प्यारा, वो है पास। बाबा की मुरली का है ये शब्द। पास के 3 अर्थ बताए हैं, पास रहना है, पास करना है, पास होना है। पास रहना है, किसके पास रहना है? किसके पास रहना है? परमेश्वर के पास रहना है, शिव बाबा के पास रहना है, परमात्मा के पास रहना है। पास होना है, किस चीज में पास होना है? ये जो हमारा युद्ध चला हुआ है माया के साथ, 5 विकारों के साथ, ये जो ईश्वरी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें पास होना है। और जो बीत गया पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया पास्ट इज पास्ट, उसको ढोना नहीं है। अगर उसको ढोते रहेंगे तो हमारी चेतना बोझिल रहेगी। चेतना को अगर उड़ाना है तो पास्ट को भूलना होगा। फिर है फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसकी चर्चा हम बहुत सुन चुके हैं। खुद को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है, क्योंकि दूसरों को खुशी करने के उसमें कई बार हमने खुद को बहुत दुख दिया है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भी कई बार बहुत पीड़ा दी है। खुद को भी माफ करना है। किसी दिन शीशे के सामने जाओ और वहां जाके खुद से भी माफी मांग लो। देन एक्सेप्टेंस, खुशी के लिए जिस ठाकुर से ना ही चारा, ये गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने कहा, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस चीज पे आपका वश नहीं चलता उसको स्वीकार करने में ही आपकी समझदारी है। अगर आप रिजिस्ट करेंगे किसी चीज को, इट विल इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल्स। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है। सो, जैसे कि वो 3 इडियट्स फिल्म में आया था ना, कि जब भी स्ट्रेस हो तो क्या करना चाहिए, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। क्या बोलना है? बहुत स्ट्रेस लेवल हो जाए तो क्या बोलना है? ऑल इज वेल। छाती पे हाथ रख के बोलो ऑल इज इन द वेल, नहीं ऑल इज वेल। देन फोकस मोर ऑन इम्पोर्टेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम जिंदगी में कई बार अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं कर पाते। व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज? हम नॉनसेंस को सेंसिकल बना देते हैं और फिर जो है जीवन के अंत में जब झांकते हैं अंत में जाके कि मैंने क्या खोया क्या पाया, तो देखते हैं अनइम्पोर्टेंट में ही जिंदगी गवा दी, जो करने लायक था वो रह गया। जैसे अब आप सब यहां आए हैं, ये करने लायक, बार बार करने लायक है। यहां पे जैसे आए हो तो ऐसे ही आप सत्संग में जाओगे जिंदगी के अंदर, तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट होगा, आपको आनंद आना शुरू होगा, ब्लिस आनी शुरू होगी, सच्चिदानंद प्रकट होना शुरू होगा, खुशी सच्ची। इसलिए खुशी और आनंद, आनंद कौन सा है? विच इज सुपर सेंसुअस, बियॉन्ड द सेंसेस, अतीन्द्रिय। तो फोकस करेंगे जब हम इम्पोर्टेंट पे और अनइम्पोर्टेंट को छोड़ देंगे। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दिखाया है कि तेर के कड़ाए के अंदर उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मछली का, और मछली की आंख में तीर लगाना है तो हाउ मच कंसंट्रेशन इज नीडेड, और वो घूम रहा है। ऐसे ही हमें भी, परमात्मा भी एक बिंदु है जैसे मछली की आंख है, उसके ऊपर अपनी चेतना का तीर लगाना है तब वो हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा। वो ध्रुवपद द्रौपदी, द्रौपदी क्या है? ध्रुवपद की प्राप्ति, वो ध्रुवपद हमें प्राप्त हो जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड, फीड योर सोल्स, सॉलिट्यूड, एकांत, एकांत में एकाग्र होकर एकांत पाना है, एकांत में एकाग्र होकर एक उस सच्चे पिता का अंत पाना है। क्योंकि जब इस संसार के हम ड्रम से थोड़ा दूर होकर एकांत में हम जाते हैं प्रकृति के अंदर और वहां बैठ के आत्म चिंतन करते हैं, संसारिक कामों से परे हटते हैं, तो वी आर एबल टू कंजर्व आवर स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। आप कुछ दिन मौन रहें तो आपकी एनर्जी कंजर्व होनी शुरू हो जाएगी, आपको आनंद की फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जो है मेडिटेशन में, यू शुड टेक रिफ्यूज इन मेडिटेशन, एकांतिक मेडिटेशन, एकांत में जाइए, मेडिटेशन में रहिए, तो आपका जो है आनंद का स्तर, खुशी का स्तर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हमारी मुरली के अंदर एक आता है, बी ट्रस्टी नॉट ग्रस्ती, ग्रस्ती में फंसा हुआ जकड़ा हुआ। लोग कह भी देते हम तो ग्रस्ती हैं जी, जैसे लाइसेंस ले रखा होगा किसी चीज का भी, हमने तो गलत करना ही है, ग्रस्ती मैंने, हम साधु संत नहीं हो सकते। अरे ट्रस्टी बनो, आपका है क्या, आपकी मिल्कियत क्या है? मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, व्हाट इज माय मिल्कियत, इस संसार में मेरा है क्या? आप थोड़ी देर विश्लेषण करो, ये शरीर मां बाप का दिया हुआ है, आत्मा ऊपर से आई है, इस संसार में जो कुछ है साथ ले जा नहीं सकते, मिल्कियत कहां है, किस चीज के मालिक हैं? इसलिए रोज मंदिर में क्या गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जग दीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। बी ट्रस्टी, ट्रस्टी बन जाओ, ग्रस्ती नहीं बनो। आपका जो तन मन धन सब है तेरा समर्पित कर दो, वैसे भी यही रह जाना है, नहीं करोगे तो भी रह जाना है, तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। फिर जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, जिंदगी एक खेल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होना चाहिए हमारे अंदर, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी, जिंदगी है खेल, हंसते हंसते खेल, हमारा एक गीत भी है, जिंदगी है खेल हंसते हंसते खेल, रो के नहीं, अगर मान लो दो टीमों में मैच हो एक हार जाए सब रोना शुरू कर दें तो वो मैच जो है वो देखो रोज मैच होते हैं तो फिर रोते ही रहेंगे, कोई ना कोई हर वक्त रोता ही रहेगा। तो जिंदगी में कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, हमें उन सब का मुकाबला करना है, हंसते हंसते खेलना है, मुस्कुराते हुए जिंदगी का खेल खेलना है, स्माइलिंगली खेलना है। फिर मेक कॉन्शियस एफर्ट टू स्माइल, स्माइल इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय कूल रहे तो स्माइल, स्पार्किंग सिस्टम ऑफ आईज, जो आपकी आंख में, नेत्र में स्पार्क है वो स्माइल से आता है। इसलिए फोटो खींचते समय कहते हैं स्माइल, तो आपकी फोटो सुंदर हो जाती है। अगर सारी जिंदगी स्माइल करेंगे तो सारी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। लाइटिंग सिस्टम ऑफ द फेस, आपका जो फेस है वो लाइट प्रकाशित हो जाएगा, चमकने लगेगा। एंड रिलैक्सिंग सिस्टम ऑफ द माइंड, अगर आप स्माइल करेंगे तो आपका जो है माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और ये कहते हैं यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड अंटिल योर फेस वियर्स ए स्माइल। यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड, आपने 4000 की शर्ट पहन रखी है, मुंह लटका हुआ हो तो क्या कहेंगे कि आप फुल्ली ड्रेस्ड हो? तो फुल्ली ड्रेस्ड कब कहेंगे? यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड अंटिल योर फेस वियर्स ए स्माइल। दूसरा, दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना है। हर वक्त आपका जिंदगी कैसी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली हो। हम ज्यादातर उदाहरण सुनते हैं, एक गिलास खाली है, आधा भरा है, आधा खाली है। हम कहते हैं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, खाली नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। योर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक हैज ए ग्रेट डील टू डू विद योर मूड, योर हैप्पीनेस, योर एडवेंचरसनेस एंड एनर्जी। टू हैव पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ, लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट, नो रिप्ले नो रिवाइंड। तो कितने ध्यान से ये इस जिंदगी में हमें चलना है। ये मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर की निगाह में चलते रहो। कई बार लोग कहते हैं फलाने की नजर लग गई हमें, क्या बोलते हैं, इस बच्चों को भी काला टीका लगा देते हैं कान के पीछे, किसको किसकी नजर लग गई। किसी की नजर ना लग जाए, लोगों की नजर बड़ी बुरी है। लेकिन अगर कोई भगवान की नजर में रहेगा तो उसको क्या किसी की नजर लग सकती है? तो ईश्वर की निगाह में चलते रहो, ईश्वर की निगाह में चलते रहो। इस सफर में थकावट है ही नहीं। ईश्वर की निगाह में चलते रहो, इस सफर में थकावट है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम जीवन जियो, इस जीवन में मिलावट गिरावट है ही नहीं। राजयोगी बनकर खुशबू फैलाते चलो, इस जीवन में बनावट है ही नहीं। फिर है, जिंदगी में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। आप बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वो गोल्ड होता है। अगर आप में मोल्ड की कैपेबिलिटी नहीं है, मोल्ड होने की, तो भी आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। तो जिंदगी के अंदर रिजिलियंस होनी चाहिए, जिंदगी के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है मोल्ड हो जाए, जैसा समय वैसा स्वरूप, अगर हम वैसा बनाएंगे तो भी हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर है सेंस ऑफ अकम्प्लिशिंग योर गोल। आपको खुशी कब होती है? जब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब आप अपने गोल को पा लेते हैं। मुझे याद है 2010 में मुझे जब बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला, तो मंच पे गए तो चारों तरफ तालियां बज रही थी। मेरे कंपटीशन में उस वक्त बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, हेड ऑफ डिविजन्स थे, मैं तो सिंपली प्रिंसिपल साइंटिस्ट था। लेकिन फिर भी जब अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पा लिया था जो कोई पाना, काम क्या बाकी रहा। तो जो पाना था सो पा लिया, जब वो आदमी पाता है तो उसको भी खुशी होती है, अकम्प्लिशमेंट से भी खुशी होती है जिंदगी के अंदर। और सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार जो है ना काम को ठीक से नहीं करते हैं, हर चीज को मोस्ट एक्यूरेटली विद ग्रेटर प्रिसीजन, जितनी हम उसमें एक्यूरेसी लाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा भी मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है, तो उसमें एक्यूरेसी लाएंगे जितना जिंदगी के अंदर। सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल वो भी जो है खुशी देती है, जैसे इस चित्र में दिखाया है, शायद उसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी आ रहा होगा। सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल, कोई भी काम करें हम उसको एक्यूरेसी से करें, परफेक्शन से करें, प्रिसीजन से करें। जितना अधिक प्रिसीजन होगा उतना जो है आपको खुशी भी मिलेगी। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद नेगेटिव पीपल, जितना संभव हो सके जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे बचने की कोशिश करो, दूर रहो, नहीं तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती कई बार। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन सम स्पिरिचुअल सोशल ग्रुप। जैसे आप सब यहाँ आए हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रुप है, यहाँ पर सोशल सर्विस हो रही है, स्पिरिचुअल सर्विस हो रही है, तो वहाँ लाइक माइंडेड लोग हमें मिल जाते हैं। लाइक माइंड लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी, अगर चेतना, उच्च चेतना वाले लोगों से मिलोगे तो आपकी चेतना का स्तर भी ऊंचा होगा, अगर लोअर कॉन्शियसनेस वालों से मिलोगे तो आपकी चेतना का स्तर भी नीचे जाएगा। तो हम सब मिलकर स्वर्ग की रचना, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हम सब मिलकर स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजयोगा मेडिटेशन फॉर हैप्पीनेस। इसके लिए जो है, जितना हम राजयोग मेडिटेशन की बहुत बात हम सुन चुके हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, वो है योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन्म जय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होके कर्म कर, मतलब गो फॉर योग में, मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम, उसके बाद आप कर्म में उतरो, पहले मेरे से जुड़ फिर कर्म में उतर, तो वो कर्म योग बन जाएगा। योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर, संगम त्यक्त्वा जन्म, असंग होकर, डिटैच होके, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, यू गिव योर 100%, उसके बाद सिद्धि हो या असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, उसमें दोनों में सुमत्वम योग उच्यते, बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखो। जब आप बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखोगे तो फिर जिंदगी के अंदर आपकी मौज बन जाएगी। लास्ट स्लाइड है ये, ये बैलेंस के ऊपर है, जैसे अभी भी बात हो रही थी प्रीवियस सेशन में कि जिंदगी में हर जगह जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आप बैलेंस नहीं बनाओगे, सर्कस का भी एग्जांपल था, तो जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं उनके अंदर अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। सारी सर्कस में लोग तालियां क्यों बजाते हैं? ताली किस बात पे बजाई जाती है? बैलेंस। हम लोगों को भी खाने के लिए भी कहते हैं बैलेंस डाइट हो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो, तो जब बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी तो भी हमारे जिंदगी के अंदर जो है आनंद और मौज हो जाएगी। चलो यहीं पे ये जो है हम इसको खत्म करते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप सब मेरे साथ बोलेंगे, इसके बाद वाइंड अप बोलो। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, दोबारा, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगी भाई साहब अवतार सिंह भाई जी का। अब आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए एवर हैप्पीनेस के लिए। टॉपिक ही है आपका हैप्पीनेस, मेक हैप्पीनेस अ हैबिट। तो बहुत अच्छे गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन किया। अब हमारे बीच में है परम आदरणीय राजयोगिनी बीके सरला दीदी जी। आप पानीपत सब जोन के इंचार्ज हैं और इस टॉपिक पर आप हमें आशीर्वचन देंगे कि हम एवर हैप्पी कैसे रहे। इतना हमने ये रिट्रीट कम कॉन्फ्रेंस कम रिट्रीट सुना खुशनुमा जीवन पर। अब इस अंतिम वे सेशन में बहन जी हमें वो आशीर्वचन के उद्गार से लाभान्वित करेंगे एवर हैप्पी रहने के लिए। आदरणीय सरला दीदी जी,
ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलते हैं क्योंकि आज आवश्यकता हर एक को शांति की है। पहली ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शक्ति मिलती है। दूसरी ओम शांति, शांति के सागर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। तीसरी ओम शांति, जब भी सुन रहे थे बीती बात को बिंदी लगाना, ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के अविनाशी संतान, मंच पर उपस्थित भ्रातावतार भाई जी और हमारी मंच संचालिका बहन चेतना बहन जी, वार सभी प्यारे भाई और बहनों, टॉपिक तो बहुत अच्छा है और अभी हमने बहुत विस्तार से भी सुना है कि हम सदा के लिए खुश कैसे रहें। सदा खुश रहने के लिए हम अपने आप से पूछें, हम किस बंधन में बंधे हुए हैं जो हमें खुशी नहीं। हम आए थे सृष्टि पर खेल खेलने, पाठ बजाने, लेकिन हम किस बंधन में बंध गए जो हमारी खुशी गायब हो गई। यही हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, सभी का जीवन खुशनुमा था, धन धान्य था। आज भी हम जड़ चित्र श्री लक्ष्मी नारायण के या राधा कृष्ण के देखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। कारण ये है कि जो हमारा वर्तमान समय है, जिसे हम कहते हैं संगम युग, कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, इस संगम युग पर हम जितना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहें बना सकते हैं, जितने कर्म ऊंचे करना चाहें कर सकते हैं। इस समय सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की देन है, वरदान है, भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहा है, पर बनाना हमने है। हमने बहुत कुछ सुना, अब उसको कितना प्रैक्टिकल में लाएंगे उतनी खुशी आती जाएगी। जैसे एक बार की बात है, एक हथौड़ा और चाबी दोनों के आपस में बात हो रही थी। हथौड़े ने कहा, शक्ल तो हमारी एक जैसी, चाबी से कहा, पर आप सदा भरपूर है और मैं खाली का खाली। तो चाबी ने कहा कि मैं ताले के अंदर जाती हूँ और सारे खजाने खोल लेती हूँ, तो मैं सदा खुश हूँ, भरपूर हूँ। ऐसे परमात्मा पिता भी हमारे को बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे खुश रहो, खुशी बांटते रहो, पर खुश रहने के लिए पहले हमें दूसरों को देना है। हम दाता के बच्चे हैं, दाता हमारा वर दाता है, भाग्य विधाता है। चाहे आज साइंस के आधार से हमने कितनी खोजें कर ली, कितने दूर की समीपता ला दी, परंतु जो अंदर का हमारा जीवन है, दिव्यता का जीवन, वो हमारा खोखला हो गया। इसमें सिर्फ दो बातें, छोटी सी मात्रा की बात है, दे और देही। मैं दे हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना पुत्रवान हूं, इतना संपत्तिवान हूं, ये सब हमारे नशे हैं, लेकिन ये नशे हमें कभी खुशी नहीं लाने देंगे। खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, छोटों से प्यार से पालना करते हैं। जितना हम दाता बन के देते जाएंगे, दूसरों की दुआएं लेते जाएंगे, तो हमारे अंदर खुशी स्वतः रहेगी। हम कभी किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखें, इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। अच्छा बनना है, हमेशा सदा याद रखें, सर्वशक्तिवान परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, वो हर कदम में हमारा साथी है। परमात्मा के माँ बाकी हैं कि बच्चे जब भी मुश्किल आवे आप प्यार से मुझे याद करो, बाबा आ जाओ तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पर हम बुलाएं तभी, अगर हमें बार बार इस बात का अभ्यास होगा क्यों परमात्मा कहते मुझे याद करो। इसलिए कहते हैं जो हमारा संबंध इस समय देह देख दुनिया देख वैभव में बहुत चला गया है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण हम उस परमात्मा से जो शक्ति लेनी चाहिए, जो उनके गुण जीवन में धारण करने चाहिए, जो अपनी चीज है, हम उसको भी खो बैठे हैं। आज हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। मैं चेतन शक्ति आत्मा, वास्तव में मैं आत्मा सर्व गुणों से संपूर्ण थी। मेरे अंदर सुख शांति आनंद प्रेम खुशी शक्तियां पवित्रता भरपूर थी। जब ये भरपूर थी तो हमारा भारत देश भी अच्छा था। आज ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, हम इसकी मांगने के लिए इच्छाएं रखते हैं। पर हम फिर स्वयं को जागृत करें कि मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप। हम दूसरों को देना सीखें तो जितना जितना दूसरों को देते जाएंगे, दुआएं सबसे बड़ा खजाना है, उतनी हमें दुआएं मिलेंगी, और जितनी दुआएं मिलेंगी खुशी आपके अंदर ऑटोमेटिक आती जाएगी। खुशी कोई खरीदी नहीं जाती है, खुशी मेरी चीज है, पर हम खुद खो बैठते हैं दूसरी चीजों के स्वार्थ में। परमात्मा निस्वार्थ है, वो हमें बार बार इसलिए कहता है मुझे याद करो कि जो आज हमारा बुद्धि योग दूसरी तरफ चला गया है, देह की तरफ, देह संबंधियों की तरफ, देह वैभवों की तरफ, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन, इन चीजों ने हमारे जीवन को खोखला किया। आज अगर हम ये सोचे कि मैं आत्मा हूं, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सब भाई भाई हैं, एक परमात्मा सर्वशक्तिवान के अविनाशी बच्चे हैं, पूछे हम क्या लेके आए थे, जब आत्मा आई थी क्या लेके आई थी, और जब जाएगी क्या लेके जाएगी। आई थी पिछले किए हुए कर्म साथ लेके आई जो आज हम खा रहे हैं, और जब जाएगी जो हम वर्तमान करेंगे वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार। मन का कार्य सोचना, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, हर घड़ी हमें अच्छे विचार सोचने हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा। आप आपस में बैठकर एक दूसरे को कहेंगे आप बहुत अच्छे हो तो भी आपके चेहरे में फर्क आ जाएगा, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं जितने शक्तिशाली चलेंगे, जितने दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, जितना दूसरों के प्रति हमारे दिल के अंदर उपकार की भावना होगी, उतनी उनकी दुआएं हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगी। हमें सबसे बड़ी बात ये सीखनी है, जो आज तक आपने बहुत सुना भी है, कभी हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं करने, कभी साधारण नहीं करने, कभी व्यर्थ नहीं करने। ये चीजें हमारी बुद्धि को खोखला करती हैं। हम सोचें, वैसे साइंसदान ने कितनी उन्नति की है, आज सारा विश्व कहाँ पहुंच चुका है, लेकिन जो अंदर का जीवन जो दिव्य गुणों से संपन्न था, खुशियों से भरपूर था, वो आज कहाँ है। कई ऐसे हमारे पास आते हैं, कहते हैं पता नहीं हमारी खुशी गुम कहाँ हो गई, जबकि सब चीजों की किसी चीज की कमी नहीं, भरपूर है, पर अंदर से खुशी नहीं। कई टेंशन में आ जाते हैं, आजकल ज्यादा मेजोरिटी टेंशन वाले आते हैं। टेंशन किस बात का, क्योंकि हम किसी भी बात को गहराई में ले जाते हैं। गहराई में ले जाएं तो वो ले जाएं जिसे हमें शिक्षा मिले या हमें शक्ति मिले। परमात्मा क्यों कहते मुझे याद करो, क्योंकि वो जानता है कि आज बच्चों की अवस्था क्या बन चुकी है। जितना हम उसको याद करेंगे, एक तो हमारे पिछले किए हुए पाप कर्म नाश होंगे, जितना हम सत्यता से चलेंगे सत्यता ही सबसे बड़ी खुशी की खुराक है, और जितना हम दूसरों को सुख देंगे उतने में खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। दूसरा जो हमारा संबंधों से संबंध जुड़ चुका है वो भी हमें परेशान करता है। आज कोई दुखी है तो सिर्फ अपने से, अपने कर्मों से या अपने व्यवहार से। हमें अपने आप को सोचना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, कि हमेशा याद रखना है कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मुझे किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखकर परमात्मा को देखना है कि वो मेरे से क्या चाहता है। लौकिक माँ बाप भी कभी नहीं चाहता हमारा बच्चा दुखी हो, तो सर्वशक्तिवान परमात्मा वो क्या चाहता है, मेरे हर बच्चे सुखी रहें, घर घर में सुख शांति हो, आपस में रूहानी प्यार हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो। पर ये लाने के लिए हम सब समाज की इकाई हैं। हम सबको ये पुरुषार्थ करना है कि मुझे बदलना है। किस बात में बदलना है, कि देह ना समझ अपने आप को आत्मा समझो, और ये सोचो कि मुझे अच्छे से अच्छे कर्म करके साथ ले जाने हैं। जो बीज आज हम बोएंगे उसी का फल खाएंगे। जैसा हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, पर सोच के बोलो। जैसा बोएंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, हम इच्छा रखते हैं कि दूसरा हमारे से अच्छा बोले, दूसरे हमारे से मीठा बोले, दूसरे हमारे को सम्मान दे, लेकिन हमें इच्छा से मुक्त होकर हमें देना है। जितना देंगे वो स्वतः आपको मिलेगा। आज आप दूसरों को देते जाओ दाता के बच्चे बनके, तो महसूस करेंगे कि परमात्मा दाता हमें कितना दे रहा है। पूछो अपने आप से, क्या दिया? हर चीज भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। खाने को कोई कमी नहीं दी, पहनने को कोई कमी नहीं दी, बुद्धि से सोचने की कोई कमी नहीं दी, क्या चीज नहीं दी? पर हमने कभी परमात्मा का शुक्रिया नहीं किया। हमें सबसे पहले सुबह उठते ही शुक्रिया करना कि दाता आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में भी कार्य करो, 2 मिनट उसको याद करके करो, ताकि आपके कार्य में कभी गलत कार्य ना हो। शाम को भी सोने से पहले उसका शुक्रिया करके उसको सारे दिन की दिनचर्या सुनाकर हल्के होकर जाओ। शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चे सदा हल्के रहें। हमेशा सोचो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, परिस्थितियां भी तेरी, परिवार भी तेरा। आत्मा अकेली आई थी, अकेली जाएगी, क्या लेके जाएगी? अकेली जाएगी, कोई साथ नहीं होगा। सिर्फ हमारे कर्म, हमारे खाते साथ होंगे। तो खातों को समाप्त करने के लिए आज हमें शिव बाबा बार बार यही शिक्षा देते कि मुझे याद करो। ये नहीं कहते घर बार छोड़ो, ये नहीं कहते परिवार की सेवा ना करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को जैसे अभी बताया भाई साहब ने, ट्रस्टी बनकर रहो। मेरा कुछ नहीं है। अगर आज परिवार भी आपके पास है, ये आपके पिछले कर्मों का खाता है। कोई लेने आया, कोई देने आया, जब खाता चुप्त होगा तो सब बिछड़ जाएंगे। आखिर आत्मा अकेली आई, अकेली जाएगी। जब जाएगी तो क्या लेके जाएगी? ये हमें बार बार सोचना है कि जब हम घर जाएंगे, जैसे आज देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, वो अपने पिछले कर्मों का खाता साथ ले आता है, और जब जाते हैं हाथ खाली होते। जैसे राजा सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी निकालना तो मेरे हाथ बाहर रखना, और मेरे पीछे सारा कमाया धन लगा देना, ताकि लोगों को पता चले था देश का मालिक गया हाथ खाली। हम ये ना सोचे हम देश के मालिक हैं, देश हमारा है, परिवार हमारा है, शिव बाबा हमारा है, कर्म हमारे हैं। आत्मा अपना मित्र भी आप है, अपना शत्रु भी आप है। आज भगवान ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, सिर्फ आपने चाबी लगानी है और उसकी शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसको सोचना, परखना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ये हमारा काम है। हम जितना ईश्वर के महावाक्यों को या जो आज तक आपने सुना है, हर एक ने आपको भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, अब जितना हमने सुना है, जितना हम उसको जीवन में धारण करेंगे, उसका बार बार अभ्यास करेंगे, उतनी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होती जाएगी, नेगेटिव छूटती जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग हमारी एनर्जी को खत्म करती है। कारोबार सब होंगे, बच्चों की पालना भी होगी, लेकिन सिर्फ एक ध्यान है कि आपस में हमने प्यार से रहना है। प्यार से रहेंगे तो आपका प्रभाव परिवार में है, फिर समाज में है, फिर विश्व में है। हम सब ये लक्ष्य रखें, मुझे बदलना है, मुझे पिता परमात्मा को पहचान कर याद करना है, मुझे बुद्धि का ताला खोलना है और उनकी शक्ति और उनके गुण बुद्धि में धारण करने हैं। सिर्फ आप कार्य करने से पहले एक मिनट भी ये अभ्यास कर देंगे कि मैं शांति के सागर परमात्मा की शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, एक सेकंड भी याद करेंगे तो आपको फील होगा कि कैसे हम शांति के सागर के पास बैठकर ये कार्य कर रहे हैं। हमें कार्य में सफलता भी मिलेगी और उसकी दुआएं भी मिलेगी, उसका सहयोग भी मिलेगा। परमात्मा इस समय इतना हमारे ऊपर रहम दिल है, कहते जब भी दिल करे, हर घड़ी सोचो, कभी तो उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो हमारे को चला रहा है, कभी हम कार्य करते समय उसके साथ कार्य कर रहे हैं, वो हर समय बाजू देता है पर हम उसे पहचानते नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण पहचान नहीं पाते। अब हम थोड़ा अपनी बुद्धि का ताला खोल के रखें, कोई कार्य करें दो मिनट याद करके करें, ताकि हमारे से कोई गलत कार्य ना हो और पिछले कार्य को समाप्त करने के लिए क्षमा मांगे या हमारे से गलती हो जाती है। हमारी दादी हमेशा कहते थे कि माफी मांगने से, सॉरी करने से कोई सारी मैली नहीं होती, थोड़ी निर्माणता की शक्ति आती है, बाकी से फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारे इस जन्म के खाते साफ होते जाएंगे और जितने साफ होते जाएंगे तो हम सदा खुशहाल रहेंगे। जितना शिव बाबा को याद करके कर्म करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, जितना हम उसके समीप रहेंगे साथ रहेंगे तो भी हमें हर घड़ी खुशी करेगी। परमात्मा यही चाहता है कि घर घर में सुख शांति हो, हर आत्मा खुशहाल रहे। हर चीज कर दो प्रभु अर्पण, अपने आप को निश्चिंत होकर के, खुशहाल होकर के अपने जीवन बिताओ। चंद घड़ियां मालूम किसी को नहीं कौन सी घड़ी आ जाए, सिर्फ हमें ये पता हो कि मुझे घर जाना है तो मुझे अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। तैयारी कौन सी करके जानी है कि जो मेरे गुण थे खो गए हैं, उन गुणों को वापिस अपने अंदर लाना है। जो हमारा जीवन इतना शक्तिशाली था वो शक्तियां फिर से जागृत करके अपने अंदर लानी है। खुशी मेरी खुराक है, हम हर घड़ी अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। कोई बात आती है तो एक लक्ष्य रखो, आई है चली जाएगी, सदा नहीं रहती, जो होगा अच्छा होगा। समय बीत जाएगा, परिस्थितियां बीत जाएंगी, पर मेरी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। हमारा चेहरा जितना मुस्कुराता होगा तो आपका परिवार भी आपको देखकर वैसा बनेगा। जितना हमारे जीवन में खुशहाली आती जाएगी, खुशी को धन से नहीं आती है, खुशी की किसी प्रकार से खरीदी नहीं जाती, अंदर से जागृत करनी है। हर कार्य करो खुशी खुशी करो, क्योंकि हमारे अपने कर्मों के बीज बोए हुए हमारे सामने आते हैं तो हमने खुशी खुशी उन्हें विदाई दें और वर्तमान इतना श्रेष्ठ कर्म करें जो वर्तमान हमारा उज्जवल रहे। वर्तमान समय का बीज हमें भविष्य फल देगा। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अभी तक आपको यही शिक्षाएं दी गई, अच्छा सोचो, अच्छा करो, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो, हर एक को अच्छा अच्छा करते चलो, ताकि आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे। शिव बाबा का वरदानी हार सदा हमारे साथ है, सिर्फ हम उसको महसूस होकर कर्म करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी और जीवन में सदा खुशहाली रहेगी। हर घड़ी हमें ये सोचना है कि मेरे ऊपर कोई बैठा है जो मुझे हर घड़ी देख रहा है। हम कहते वो तो दूर है, सबसे पहले कॉन्शियस अपने आप को देखती है कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम करते हुए सोचते नहीं हैं। अगर हम पहले दो घड़ी सोच लें तो हमारे से न गलत काम होगा और श्री पिता परमात्मा की दुआएं मिलेंगी, परिवार की दुआएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है हर एक लक्ष्य रखे कि मुझे बदलना है, मेरे बदलने से ही परिवार का बदलाव है। हम ये कभी ना सोचेंगे वो बदले तो मैं बदलू, नहीं, ना समय बदलता जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, लेकिन मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाकर, अपना दर्श जीवन बनाकर परिवार के आगे, समाज के आगे एक सैंपल बनना है, ताकि हमारे सैंपल से अनेकों का कल्याण हो। सारा विश्व हमारा परिवार है, हर एक के प्रति हमने शुभ भावना शुभकामना रखनी है। अभी आप दो मिनट के लिए अगर साइलेंस में रह के इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, प्रभु पिता की दुआएं मिलेंगी। थोड़ी अपनी बैठक को ठीक करके मन को ऐसे विचार दो। सर्वप्रथम सभी अपने मस्तक में देखो, अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, स्वतः उत्तर मिलेगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हूं, मैं एक चमकता हीरा हूं, मैं सत्य हूं, चेतन हूं, अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर एक मंदिर है, इसमें मैं आत्मा देवता बैठी हूं, मैं आत्मा वास्तविक स्वरूप में शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा निजी गुण है, शांति का सागर मेरा पिता है, शांति धाम मेरा वास्तविक घर है। तो चलिए पिता परमात्मा से मिलन मनाने। मैं आत्मा दे और दे के सर्व संबंधों को छोड़ मन बुद्धि के द्वारा उड़ती जा रही हूं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाते हुए उड़ती जा रही हूं, सूर्य चांद तारा गण को पार कर छठा ब्रह्मा तत्व मूल वतन जहां लाल प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, अनेक आत्माएं शांत रूप की स्थिति में स्थित है, सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की सर्वगुण और सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर समाती हुई चारों तरफ अपने वाइब्रेशन फैला रही हूं, सारा विश्व मेरा परिवार है, आत्मारोह में हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं, सभी सुखी रहें, खुशहाल रहें, निरोगी रहें, घर घर में सुख शांति हो, ऐसी मेरी शुभ भावना शुभकामना है। प्यारे शिव पिता, आप रूप में ज्योति बिंदु हो, गुणों में सिंधु हो, आप शांति के सागर हो, मैं आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, आप प्रेम के सागर हो, मैं आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूं, आप सुख के सागर हो, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, आप सर्वशक्तिवान हो, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, आप ही मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सर्व संबंधी आप ही हो, मैं जो हूं जैसी हूं आपकी हूं, आपकी थी, आपकी होकर रहूं, आपका वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पे है, मैं आपकी हर श्रीमत का पालन कर अपना दर्श जीवन बनाए, परिवार का, समाज का, विश्व के कल्याण के निमित्त बनू, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा वापिस कर्म करने के लिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह में विराजमान हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसी प्रकार आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, सबसे प्यारा टाइम है अमृत वेला, जो 4 से 5 पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां हमारे ऊपर आती हैं, हम जितना शक्ति भरना चाहे भर सकते हैं, वो वरदानी टाइम है। फिर आप कारोबार करते हुए भी 2 घड़ी याद करेंगे, कईयों को जैसी आदत होती है शॉप खोलेंगे पहले धूप जगाएंगे, ऐसे हमने अंदर का धूप जगाना है, अपने आप को शांत स्वरूप में, खुशहाल स्वरूप में रखें, और हर घड़ी हम उस पिता परमात्मा का शुक्रिया माने तो हमारे जीवन सदा के लिए खुश हो जाएगी। खुश रहना, खुश रखना और खुशियां बांटना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। शांत रहना मेरा स्वधर्म है, जितना हम अपने आप को शांत रखेंगे, दूसरों को भी शांत रखेंगे, तो खुद भी खुश रखेंगे, दूसरों को भी खुशियां बांटते रहेंगे, तो हमारे जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहेगी। मुस्कुराते रहें, सोचे हमने क्या ले जाना, यही खुशी की खुराक। आज श्री कृष्ण का चेहरा देखो, सभी कैसे झुकते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उसने पहले जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है जिसके कारण आज दुनिया उसके आगे झुकती है। अब अष्टमी आई, कितनी दुनिया झुकी किसके पीछे, सिर्फ उसके गुण और शक्तियों के पीछे। ऐसे ही हम अपना जीवन महान बनाएं, कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी पद पाए। आज समय है हम समय को पहचाने, समय व्यर्था न गवाएं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाकर प्रभु के चिंतन में रहकर हर कर्म करते हुए उसकी याद में रहें, खुश रहें, खुशहाली रहे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य जय मेर शुभ भावना है। क्या पाए हैं इतने दिन आपने सबके सबकी बातें सुनी, अच्छी अच्छी सुनी, अब इन्हें गांठ बांधकर साथ ले जाना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ताकि जाते ही आपके परिवार को भाषण आए कि वहाँ गए हैं तो कुछ न कुछ प्राप्ति करके आए हैं। तो भगवान की दुआएं, ईश्वर पिता की दुआएं सदा आपके साथ हैं, इसलिए सदा खुश रहो, खुशहाल रहो, खुशियां बांटते रहो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सरला दीदी जी का, जिन्होंने हमें एवर हैप्पी रहने के लिए ये इतने अच्छे टिप्स दिए। अब आपको पूछा गया बार बार हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, अब आप ही बताइए। आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आप आत्माएं स्पिरिचुअल पर्सन क्या लेकर आए थे और अभी आप क्या लेकर जा रहे? एवर हैप्पी रहने के टिप्स मिले ना आपको? तो पहला ज्ञान का अति अहम पॉइंट आपको मिला कि आई एम लाइफ फोर्स, आई एम लाइव एनर्जी, आई एम कॉल्ड, आई एम सोल, है ना? आपको पहले बार पता पड़ा कि आई एम नॉन फिजिकल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन। और फिर हैप्पी रहने के लिए शांति कितनी जरूरी है ना? बोलते वेयर देयर इज सैटिस्फैक्शन देयर इज हैप्पीनेस। तो हैप्पी रहने के लिए संतुष्टता भी अति आवश्यक है। और हमारे राजयोगी अवतार सिंह भाई जी ने कहा कि शांति भी अति आवश्यक है, तभी आप हैप्पी रह सकते हैं। तो आपका ये कॉन्फ्रेंस कम रिट्रीट से यहाँ पर खत्म होता है। ये इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम वा सेशन था। आपको बहुत बहुत मुबारक इस एवर हैप्पीनेस के लिए। एवर हैप्पीनेस आपको मुबारक हो। ओम शांति।